यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6/9/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा बताने में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। खेती करने वाले भाई इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले खेत को सुधारना होता है, सूड करे अलसूड करे चीर करे चौक करे तब जमीन ठीक होती है। और सूड नहीं करे ओड़ावर में अगर धान बो जाए तो धान हो जाए। सबसे पहला काम वो है, पीछे खेती नहीं करे तो सबसे पहली बात है कि बड़े घोर घोर जो पाप है, अन्याय पाप है, हिंसा है, हत्या है, ये छोड़ोगे तब परमात्मा की तरफ चलोगे। एक कहीं वचन सुनने में आया कि स पापिस ततमो लोक यह कुरियात कुल नाशनम, संसार में पापियों से बहुत बड़ा भारी पापी वो है जो कुल का नाश करता है। ये आपकी नसबंदी ऑपरेशन और जितना ये सब कुल नाश करने वाला है, जाति नष्ट करने वाला है, महान घोर पाप है, गर्भ गिरा देना, संतान पैदा न होने देना, दुर्लभ मानुष हो देहा मनुष्य दुर्लभ है, वो भी इस वैदिक हिंदू समाज में कल्याण की प्राप्ति बहुत सुगम बताइए, बहुत सुगम बहुत सुगम। उस समाज में न आने देना कितना घोर अन्याय गुना घोर पाप है। हमारे को बहुत दुख होता है आपकी अवधि देख करके, पसंद देख करके अंदाजन लगाया है। मजदूर शुमारी की संख्या तो बताई नहीं है, सरकार कांपे खुद डरे है। 40-45 करोड़ हिंदुओं की कमी हो गई है और फिर भी बहनों माता हमारी मानते नहीं, करूं क्या? अरे टाबो तो रो और क्या करे बताओ, बहनों मानो, ऐसा घोर अन्याय मत करो मत करो मत करो। कुल का नाश कर रही हो, जाति का नाश कर रही हो, वंश का नाश कर रही हो, आगे वंश न बढ़े। महान कोई पाप करता है उसके कुल का नाश होता है, उसके वंश का नाश होता है। हरिपुर बगड़ी जहां पर हरिपुर है उसमें रहने वाले अग्र समाज के भाई थे, मुरली राम जी नाम महाराज के संत हुए वहाँ, शाहपुरे के संत थे। उन्होंने कह दिया कि मेरे पीछे तुम चबूतरा मत बनाना, कोई वहां महा मत लाना, वहां के वो बना वो वंश खत्म हो गयो। महाराज की बात नहीं माने, आगे एल को चाली वंश खत्म हो गया अग्रवाल से। जो संतों की बात नहीं मानते, वेदों की शास्त्रों की बात नहीं मानते, उल्टे चलते, उनका वंश नष्ट हो जाएगा, ये उनका श्राप है। आप जीती जागती वंश का नाश करती हो, कुल का नाश करती हो, कितने पापी बन गए, कितने हत्यारी बन गए। अपराध करता है, पाप से बड़ा अपराध होता है, जो अपराध करता है उसका ये दंड हुआ कि उसके कुल में कोई नहीं रहा, सब वंश ही खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा साप होता है, तब ये दशा होती है। वो आप जान जान करके नाश कर रही हो, कितना पाप होगा, कितना अन्याय होगा, सुनते नहीं हो। ए भाई लोग, सुनते नहीं हो आप, पाप का ना इतना बड़ा भारी पाप कर रहे हो। 40-50 करोड़ हिंदू आते वो खत्म कर दिए है इन वर्षों में, अभी में इधर नसबंदी ऑपरेशन ये जितने काम चले गर्भपात आदि करने में 40-45 करोड़, उनमें से 5-10-15-20 भी भजन में लग जाते तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते। वो बड़ा भारी अन्याय अत्याचार क्या करें, आप कितनी बड़ी हत्या करी है। अब भी कृपा करो, इसको बंद कर दो तो अच्छी बात, महान पाप की बात है। मानते हो नहीं आप, अब भजन स्मरण कहाँ होगा, खेत शुद्ध होगा तब हो जाए। अलावा मैं ऐसे ही हल चलावा करूंगा, क्या वो खेती हो जाएगी। महान महान पापों का तुम नाश करते ही नहीं हो, पर नाश लूंगा जान जान कर पाप करते हो, जान जान करके होड़ा होड़ लगी है। ये बहना तो कितनी विलक्षण है, एक कोई नहीं करता। तू ये प्रश्न करे, तू प्रश्न करे, मार पीछे पड़ जाती है कि ऑपरेशन कराओ, सब पीछे पड़ जाए। महान हत्या कर रही हो, बड़ी भारी हत्या कर रही हो, स्वयं हत्या करी औरों से हत्या कराती हो। पाप करने वाला पापी होगा, पाप का प्रसार करने वाला महान पापी होता है, जो पाप का ही पाप का प्रसार करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है तुम्हें, मैंने बना है तुम्हारा। ये भाई लोगों से ये कहना है, क्यों संत से निरोध करते हो। बात बताई जाती है कि अन्न कम पैदा होता है इस वास्ते देश में, या बात के अन्न कम है इस वास्ते मनुष्यों की संख्या घटाओ। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, वृक्ष ज्यादा होते हैं, वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा होने से अन्न पैदा ज्यादा नहीं होगा। अच्छी ये बात मान ली जाए कि भाई अन्न कम है, आदमी घना हो जाए तो कहाँ खावेंगे। एक एक आदमी एक दिन में 30-40 रुपया रोजाना या खेतों में कमाते हैं, मेरे पास लिखित आया है, 30 रुपयों से कम नहीं किसी के भी। एक दिन आया कि 40 रुपयों से कम नहीं है, मजदूर लाते हैं, 40 रुपया रोजाना देना पड़ता है, रोजाना कितना अन्न खाएगा। अगर पाव भर के अन्न हो जाएगा रुपये का तो 40 रुपयों का अन्न खा जाएगा वो। कुटुंब का पालन कर सकते हैं, अरे संख्या कम कर दो, नहीं तो 10 आदमी घर के हो वे काम कर दो, 400 रुपया रोजाना होते हैं, कितना अन्न खाएंगे। सोचते नहीं हो, विचार तो करो। इनमें जो हिसाब करने वाले बाहर, मेरे पीछे मिल जाना और मेरी बात को जो उत्तर देना वो दे देना। और घर के आदमी 40 आप घर के 10 भी आदमी हो वो काम करोगे उतना 10 आदमी मजदूर काम करेगा। चालीस रुपया देकर 400 रुपया एक दिन में खर्च करो उतने 400 रुपयों में जितना काम होता है क्या घर के 10 आदमी हो तो उतना ही काम होगा? क्या ये जानते नहीं हो? क्या आपको पता नहीं है इस बात का? अगर घर के आदमी हो तो कितनी खेती बढ़िया होगी, कितने आदमी काम करोगे? 10 रुपया दो, 10 आदमी में 400 रुपया देना पड़ेगा। वे रुपया तो घर में और 10 आदमी 15-20 आदमियों का काम करेगा, 800 आदमी 800 रुपया बच गया। 800 केवल एक हाँ करो सोचते नहीं हो? उधर तो शास्त्र की दृष्टि से महान हत्या कर रहे हो, इधर बिल्कुल लौकिक दृष्टि से 30-30 रुपया 40-40 रुपया रोजाना मजदूरों को देते हैं और मेरे को कहा कि आदमी मिलते नहीं है, काम करने वाला आदमी मिलते नहीं, क्या करें? 40-40 रोजाना रुपया, रोजाना 40, रोजाना 30-35-40 रुपया, कम से कम 50-60-70 रुपया तो क्यों को देते हैं, परंतु कम से कम 30-40 रुपया से कम नहीं है, कोई मजदूरा कम नहीं है। आप लोगों का लिखित मेरे पास में पत्र आया है, 1030 रुपया 1040 कम से कम 40 रुपया रोजाना एक आदमी को देते हैं। अरे घर के आदमी हो, अरे घर का आदमी बंद करोगे तो कहां से घर का आदमी लाओगे? होश नहीं, आप विचार नहीं करते हो, कब सोचोगे ये बात? विचार तो करो, नाश कर रहे हो, बात सुन ली नहीं। हाँ ऑपरेशन, मेरी बात बुरी लगती है आपको, पर विचार नहीं करते हो, स्वयं सोचो। इतना 10 आदमी घर के अगर आओ तो कई खेती करो, कई फैक्ट्री खोलो, कई तरह का धंधा करो, व्यापार करो, दलाली करो, नौकरी करो, कितने रुपये पैदा होंगे उनमें, अन्न खर्च कितना होगा, पैदा कितनी होती है, पाव भर अन्न मिलेगा रुपये का तो भी आप चौकी तरह से पेट भर सकते हो, चौकी तरह से बचेगा। क्या 40 रुपया अन्न खा जाएगा एक दिन आदमी? एक पाव भरोगे तो 40 पाव खा जाएगा? विचार करो आप, 10 से अन्न खा जाएगा वो, अन्न कम हो गया, अन्न कम हो गया, बिल्कुल अंधेरे में महान मूर्खता है। इतनी बुद्धि आप में नहीं है? कारीगर होते हैं, लकड़ी के कारीगर, पत्थर के कारीगर, पित्तल के, लोहे के कारीगर, सोने के कारीगर 400-500 रुपया रोजाना कमाते हैं, 250 से कम नहीं। इस बात सुनी है हमने, कमाने वालों ने कहा 400-500 कम कमा रहे। आयुर्वेद का काम करो, डॉक्टर का काम करो तो दिन में 1000-1500 रुपया रोजाना। अब अन्न कितना खाओगे? कितने कितने रुपया रोजाना मिलते हैं, इस सब देखा ही ना। हाँ सा अन्न नहीं है, हाँ सा संख्या करो, संख्या कम करो। अक्ल कहां चली गई? विचार नहीं करते हो आप? 200-250-300 रुपया मामूली आदमी का, 400-500 रुपया मैंने देखा है। हमारा रामद्वारा है भीनासर में, बचपन में वहां रहा हूं, वहां मैं भिक्षा को जाता था सुथारों के घर में, जिनमें आज बड़े बड़े लखपतियों की हवेलियां जू उनका मकान बन गया है। ये प्रत्यक्ष बात है, जाकर देख लो, कोई मैंने देखा है पहले। इतनी जहाँ पैदा है कहाँ पर बंद करो अन्न नहीं मिलेगा, ऐसे घर कैसे बन गए, बिना पैसे ही बन गए। 300-400 रुपया रोजाना कितना अंगन खर्च होगा, इसे दृष्टि नहीं डालते हो आप, कितने धनी बन गए, कितना रुपया उनके संग्रह में हो गया है। सुना लोगे बाप, सुना है 300-400-500 रुपया रोजाना मामूली बात, अब खर्च कितना होता है घर में, 100 रुपया खा जाएगा एक आदमी, 500 रुपया पैदा हो 100 रुपया के 5 आदमी खा जाइए, इधर देखते ही नहीं, मार हत्या कर रहे हो, मार अनर्थ कर रहे हो, नरकों का रास्ता कर रहे हो, अरे घर में घाटा पड़ रहा है, घर के काम करने वाले हो तो कितनी पैदा होगी, मजदूरी मिलती है तो अरे घर का काम कर तो और ज्यादा होती है। लाखों रुपये का काम करने वाले आप लोग, व्यापार करने वाले जो सज्जन है, लाखों रुपया पैदा करते, व्यापार करने वाले एक में दो मिट्टी ब्याज आज साधारण है रुपयों का, कितना ब्याज कितना होता है हिसाब करो, कितना काम होता है, अरे घर के आदमी हो तो कितना काम करेंगे, अच्छी तरह से मुनीम रखते हुए काम करते हैं तो इतना आज भरोसा है मुनीमों का, बड़े बड़े घरों में मैंने बातें सुनी है, मुनीम धोखा दे गया, बंबई के एक आदमी की बात कहता हूँ, नाम नहीं बताता हूँ, उसने सोना इकट्ठा किया अपने देश में, मुनि मैं जिसको ज्यादा रुपया दिया नहीं उसमें जाकर राज में पकड़ा दिया, क्या दशा हुई उनकी, घर के मुनीब, घर के भाई, घर के कुटुम्बी कितना आज अनर्थ कर रहे हैं, घर बेटा हो ऐसा क्यों करे, घर के आदमी इतना नहीं करता जितना मुनीब नौकर काम करते हैं, पहले कितने नौकर सज्जन थे, कितनी ये माताओं बहनों कितना कायदा रखती थी, बूढ़े हो गए मुनीब, उसे बाहर जाते थे मुनीम जी बैठा है, मुनीम जी बैठा है। राजपूतों की रावड़े की बात मैं कहता हूँ, चाकू रावड़े की बात है, मेरी देखी हुई बात, ठकरानी बारहवीं गए बॉम्बी जी बैठा है, बॉम्बी जी समार वो बैठा बूढ़ा, बॉम्बी जी बैठा बाहर किस जाओ, बॉम्बी जी बैठा, ये बॉम्बे जी का कायदा, अरे आज को हम भेड़ा खाओ और पियो, अरे कायदा कुछ नहीं, ये कोई खाने पीने से एकता होती है, एकता तो हृदय में प्रेम होता तब होती, नाना में के बूढ़े को नाना कहते थे और छोटे को मामा कहते थे, सभी गांव की बात है, एक दूसरे गाँव गए थे, उनको मैं जानता हूँ, वहां की बात गई, बात कैसे हुई अब नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, अच्छा नहीं है, वो वहां की खास ठकरानी हमारे गुरु महाराज को पिता मानती थी, मान्यता थी उसकी, उसने कहा अब क्या करें, एक काना गुंग था मैं उसको कह दीजिए नहीं, काना गुंग था, अर्ज क्या हुई, मेरी बात गई एक दूसरे गांव में सोरी दी हुई थी और उसी गांव की सोरी इस गांव में आई हुई थी, वे घर में आपस में आमी सामी ब्याह हो गया हुआ था, तो वे गए उनके पति ठाकुर वहां गए तो मैंने समझा कि हमारे घर की कन्या है, तो आई तो उम्र हाथ धर दिया, रुपया दिया कुछ दिया, उसको बहन बेटी की तरह वो थे सुथार, ये थे पातावत, गांव की बेटी ऊपर हाथ रख दिया। वो वहां ब्याई हुई थी रिमसल में, उसका ससुराल था वहां। अरे वहां की बेटी वहां ब्याई हुई थी, उन सब जगह हमारी बेटी होगा थी बहू। अब वह बेटी हो गई, वो आती है घर पर तो वह ठकरानी कहती है अब हमारे सगा हो गया ये, अब वहां को काना घूंगटा मुंह तो खो काटी जानी है, फिर भी घूंगटा रखती आदर करती, पिता की तरह मानती। ये हमारे गांव की दशा है, गांव की एकता कर दो, एकता इसका नाम है जो स्नेह होता है। दूसरे जाति का भी बड़ा है तो पिता के समान ही वो मानता है, बेटी के समान मानकर सिर पर हाथ रखता है, रुपया देता है। हमारी कन्या है, हमारे गांव की कन्या है, जाति नाती तो भी उनका इतना आदर। बताओ वो एकता है। आज क्या हुआ है, एकता करें तो इतना जोर लगाया, एकता में जोर लगे, एक एकता हो गई, एक एक हो गया। माँ दूसरे वोट दे, बाप दूसरे में दे, बेटो तीसरे में वोट दे, अरे घर में लड़े बैठा, एकता कर रहा हूं, सुखी एकता हुई। आदशा है आदेश की, मन तो हो रही है। आप लोग क्यों अन्याय करते हो, क्यों पाप करते हो, क्यों कुल का नाश करते हो, क्यों वंश का नाश करते हो, क्यों जनता का नाश करते हो, हत्या करते हो, बड़ी भारी हत्या करते हो। अपने समाज में कितने कितने संत हो गए, महात्मा हो गए हैं, आप जन्म नहीं दोगे तो कहां से संत आएंगे। क्या बताऊं, मेरे अंतर्गत में दुख होता है। पहले संतान हम दो, हमारे दो, पहला एक दो संतान शुद्ध प्राय नहीं होता, नियम नहीं है। पहले संतान भी अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, परंतु पहला संतान होता है आसक्ति होती है, राग होता है स्त्री में, पुरुष का पुरुष के राग में, राग पूर्वक किया हुआ काम अनर्थ का कारण होता है। अर्जुन ने कहा कि ये जानता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है, 36वें श्लोक में 23वें अध्याय भगवान उत्तर देश है, काम ऐसा क्रोध ऐसा, अन्याय का कारण काम है। वो काम से प्रेरित होगी जो संतान होगी, महान दुष्ट संतान होगी, दो संतान दो दुष्ट होंगे, आधे सच्चा सज्जन होंगे, जितनी उसी काम की प्रेरणा नहीं होगी तब तो दुष्ट दुष्ट तुम्हारे संसार में पैदा हो जाए। ऐसा तो तुम काम करते हो, कहां से संत निकलेंगे, अच्छे महात्मा कहां से आएंगे, क्या ऊपर से बरसेंगे। यही तो माताओं है हमारे को जन्म लेने वाली, यही तो है। ये जन्म नहीं जाएगी तो हमारा जन्म कहाँ होगा, बताओ। क्या आंखों के लगेंगे मनुष्य, वो बंद कर दो। कितना अनर्थ कर रही हो, ऐसे संत महात्मा हो जाए। अब 5-7 दिन में कोई एक भी संत निकल जावे, कितनी विलक्षण बात है। श्री सेठ जी ने कहा था कि विद्यालय में 60-70-80-100 बालक पढ़ते हैं, एक दो आदमी निकल गया हमारे विद्यालय में से, पिछले 50-100 वर्षों तक विद्यालय चला, उसमें एक दो भी अच्छा निकल गया तो हमारे लाखों रुपये लगे हुए सब सफल। कहते हैं कि एक दो भी संत हो जाए, एक दो चार का भी सुधार हो जाए तो हमारे लाखों करोड़ रुपये सब सफल। रुपया तो सब यही छोड़कर मरोगे, अगर वो संत हो जाए उसके द्वारा कितना उद्धार होगा, दुनिया का कितना भला होगा, गिनती नहीं कर सकते आप। अन्नदानम महादानम विद्यादानम तत्वाधिकम, अन्नदान महादान है, परंतु महादान से बढ़कर विद्यादान, और विद्यादान में भी बिना विद्यादान इसमें समान कोई दूसरा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। इतना विद्यादान कौन ले सकता है, जिसने अपना कल्याण कर लिया है वही कल्याण कर सकता है, जिसका कर लिया कल्याण, शास्त्रों के पढ़कर पंडित हो गए, क्या कल्याण हो जाएगा, क्या उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा कैसे निकलेगा, आप जब बंद ही कर दोगे तो वो कहां से आएगा। अच्छे अच्छे संत जन्म रहे हैं, इन माताओं से जन्म है, इन माताओं का दूध पिया, इन माताओं की गोद में खेले, कहां से आया? धन जन ने ऐसा सत जाया, सुमन थाल बजाया, संत हमारे जो संत आया है भगवान, कितने संतों की महिमा है, वे आपकी गोदी में आकर के आपका दूध पी करी हुए, आप ही जन्म नहीं दोगी तो कहां जन्मेंगे? इस भारतवर्ष में संत कितने विलक्षण संत हुए हैं, कितने संतों की वाणी लिखी हुई पड़ी है, प्रकाशित नहीं हुई है, और कैसे कैसे महात्मा हुए हैं, अलौकिक अलौकिक महात्मा हुए हैं हिंदुओं में। और जगह ऐसी बात नहीं है, अच्छे पुरुष सब में होते हैं, बुरे पुरुष सब में होते हैं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, सब में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, परंतु हिंदू समाज, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में जितना सुधार है, जितने ग्रंथ हैं, जितना इसमें विद्या है, जितना गहरा उतर के विचार किया है, किसी भाषा में किसी ये नहीं है। आप इतने बैठे हो, मेरे को बस समझा देना, मैं फिर कहना शुरू कर दूंगा। मेरी जानकारी में अभी तक जितना मिला है, जो वैदिक शास्त्र में जितने शास्त्रों का अध्ययन किया, जितना सुना है, हर एक विषय में कितने गहरे उतरे हैं, कितना गहरा विमर्शन किया है ऋषि महर्षियों ने। आयुर्वेद में आप दृष्टि, अरे रसोई बनाने में कितनी विलक्षणता रही है, खेती आदि करने के बीच में अभिमन्यु शास्त्र बताया, जिसमें रुईज पीली लाल सफेद रुईज पैदा हो, रुई ऐसी रंग वाली, मतलब उसने रंग को दूसरे ही नहीं भीगा ही नहीं हो, ऐसे ऐसे हम शास्त्रों में कृषि विद्या का भी ज्ञान है, खेती का भी ज्ञान है, जिस विषय में जाओ बड़ा गहरा गहरा विद्या विज्ञान है, कौन पढ़ेगा वो? और परमात्मा की प्राप्ति की कितनी विलक्षणता है। मेरे से एक धुन रही है कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाए और सबको हो जाए, ऐसी खोज लो, मैं इसमें निष्फल नहीं हुआ हूं, और अभी मेरी खोज है बहुत जल्दी कैसे कल्याण हो, जीव का जल्दी और सुगमता से कैसे कल्याण हो जाए, ऐसी बातें मेरे को कई बातें मिली है और फिर मिल रही है, ऐसी विलक्षण है कहाँ? आज तो बढ़ाते हैं ईसाई अपना धर्म बताया तो बहुत ज्यादा मिल जाए, हमारा राज हो जाए, जय राम जी, यानी खत्म काम। ये संस्कृति आपकी कितनी विलक्षण है, दुनिया मात्र का उद्धार करने वाली चीज है। हमने एक भविष्यवाणी सुनी है, एक लेख आया है कई वर्षों पहले, उसने भविष्यवाणी जितनी बातें हुई कहते हुए मिलती चली आ रही है, जैसे भविष्यवाणी की वैसे ही। अभी भविष्यवाणी वो मेरे को सुनाई थी, एक सज्जन ने पुस्तक लाकर पढ़ाई थी, दिखाई थी, उसमें लिखा है ये 2000 होकर के 6 वर्ष आएगा, उस समय में बड़ा घोर युद्ध होगा, पहले 2000 के बाद युद्ध होगा, 2006 होने पर सन 2000 होने पर फिर ये दूसरे सब जातियां नष्ट होकर के हिंदुस्तान के हिंदू बचे, उसके द्वारा ही हिंदू से वैदिक संस्कृति का प्रसार होगा, तब इसे हिंदुस्तान का आदर होगा, ऐसी भविष्यवाणी है ये। और उनकी वाणी पहले ठीक निकली है, पहले दूसरे दो युद्ध हुआ, तीसरे युद्ध वो होगा, उसमें लिखा दो युद्ध हुए हो चुके हैं, उनकी भविष्यवाणी थी वो सत्य हो गई, तीसरे युद्ध हो गया, अभी उसमें आदमी बहुत मरेंगे, बहुत कम रह जाएंगे, बहुत नष्ट हो जाएगा। मुसलमानों के 1400 वर्ष की है, मोहम्मद ने पहले कह दिया कि 14 वर्ष है, वो 14 वर्ष उनमें उसमें लिखा है कि फिर मुसलमान कोई रहेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएंगे सब। एक मुसलमान ने खुद आचार्य ने लिखा है 1400 वर्ष, इतनी बड़ी संस्कृति आएगी, तो आप सत्यानाश क्यों कर रहे हो? कितना विलक्षण वैदिक संप्रदाय है, कितना है। आप चौड़े देखो, हिंदुस्तान में सब आ सकते हैं, पाकिस्तान में सब आ सकते हैं क्या? मंदिर नष्ट किए जाते हैं, हिंदुओं का नाश किया जाता है, पक्षपात किया है, मुसलमानों के पहले समाज वो कितने कितने बढ़ते राज्य रहे, क्या दशा हुई है। नागौर में आदमी जला नहीं सकता, हिंदू जला नहीं सकता, कानून निकाल दिया, एक मोहर दे तो एक हिंदू जो सकता है, नहीं तो गड्ढा जाएगा, सब नहीं चलेगा। हिंदुओं ने कोई कानून बनाया ऐसा? हिंदू राज्य में कोई कानून बनाया ऐसा? ये बादशाह की समझ की बात है, मैंने सुनी है। तो एक सेठ ने बहुत खरीद करके ले ली, वह खरीद में कोई हिंदू जला हुआ अपना, हिंदुओं ने कोई कानून बनाया ऐसा? हिंदू राज्य में कोई कानून बनाया ऐसा? ये बादशाह की समझ की बात है, मैंने सुनी है। तो एक सेठ ने बहुत जमीन खरीद करके ले ली, वह खरीद में कोई हिंदू जला हुआ अपना, ऐसा प्रबंध किया, जला नहीं सकते, गाड़ो जला नहीं सकते। ये बात मालूम करी हमारी, ऐसी ऐसी दुर्दशा हुई है संसार में, जहां कहीं आप थोड़ा ध्यान देकर देखो तो हिंदुओं ने क्या दुर्दशा करी है दूसरों की, फिर उन्होंने क्या दशा करी है। जगह जगह दंगा होता है, लड़ाई होती है, तो किसके कारण से होती है, इसमें आप अपरिचित नहीं हो, जानते हो। उस हिंदू धर्म का, हिंदुओं के जनता का ही नाश करोगे, हिंदू धर्म पालन करेगा कौन, हिंदू शास्त्र पढ़ेगा कौन, ज्ञान को ज्ञान होगा। जब आप सोचो, सज्जनता से विचार करो। एक और बात है, हिंदुओं ने जितना हिंदुओं का नाश किया है उतना विधर्मियों ने मुसलमानों का नाश नहीं किया है, और मुसलमानों का नाश जितना मुसलमानों ने किया है इतना हिंदुओं ने नहीं किया है, ईसाइयों का नाश जितना ईसाइयों ने किया है उतना दूसरों ने नहीं किया है, एक भेगधारी साधुओं ने दूसरे भेगों को जितना निराश किया है इतना ग्रस्तों ने नहीं किया है। संभाव्य जाति तो भयम, थोड़ा सा ख्याल करो, आप थोड़ा सोचो, क्यों सत्यानाश कर रहे हो, वंश का, हिंदू को संतति का, अगर इस समाज का नाश कर रहे हो, कितना पाप होगा। और जीते रहेगा जैसा अन्न कहाँ से खाएगा, अन्न मन अन्न तो इतना बना हुआ ही है, मंजिल में अन्न कहाँ खाएगा, इस वास्ते संतति नाश करो। और उपवास मत करो, उपवास के दिन अन्न बसता, स्वास्थ्य ठीक होता, वो तो करता निषेध, स्वास्थ्य की बात निषेध। जन कल युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, उल्टा चल चला दुनिया में, सबकी मति बो रही है, उल्टा चल उल्टा, अधर्मम धर्मी मन्यते तमसा बचा, सर्वाधान विपरीता बुद्धि सापार तामसी, तामसी बुद्धि हो रही, तामसी बुद्धि से तामसी काम होते हैं, ऊंधा काम भी सूंधा दिखता है, ठीक दिखता है। मेरी बात सुन करके बहनों माता कहीं हंसती है कि स्वामी जी क्या कहते हैं, और कई भाई मर के पास हंस रही है कि स्वामी जी समझते नहीं, पैसों का समझ में स्वामी समझते नहीं। मैंने कभी कभी अभिमान आकर कह दिया, अभिमान की बात है, वो बढ़िया बात तो नहीं, पर मेरे आई है मन में, तुम कहते हो पैसे नहीं समझता, मैं पैसा और पैसा छोड़ना दोनों को समझता हूँ, आप पैसे पैसे समझते हो, छोड़ना नहीं जानते हो, मेरे से आधा जानते हो आप। मैंने पैसे रख कर भी देखे, पैसा भेंट लेकर देखा है, और पैसा न रख करके देखा है। आपने पैसा पैसा कमाना ही देखा है, रखना ही देखा है, छोड़ना आपको नहीं आता है, तो मैं दुगुना जानता हूं तुम्हारे से, जानते कैसे नहीं है। मैंने पैसा रखा नहीं है, लिया नहीं है, तो अपरिचित कैसे हूं मैं, वो भी मैं भोगा मैं भुगत भोगी हूं। अरे आप नहीं जानते हो, आप पैसों में त्याग नहीं जानते, जानते तो मेरे को बताओ, कोई आवे आदमी में से हम पैसों को जानते हैं तत्व से, आओ बताओ। थोड़ा सा विचार करो ठंडे हृदय से, क्यों सत्यानाश कर लोग और परलोक दोनों क्यों बिगाड़ रहे हो? अपना सत्यानाश क्यों रहे हो? क्यों अपने पैरों में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारते हो? मैं किसी के साथ द्वेष नहीं रखता, बैर नहीं रखता। हमारे मुसलमान भी आते हैं, ईसाई आते हैं। मैं जयपुर में चातुर्मास था, मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले आर्य समाजी जन्माष्टमी के दिन हमारे को ले गए आदमी आर्य समाजी व्याख्या दिया मैंने जन्माष्टमी के दिन। हमारे विरोध नहीं होता, मन में बैर नहीं है, दूसरे बैर रखे तो बैर रखने वाले का नुकसान ज्यादा होता है। दूसरा कहते भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो बदले दूध ही पारी, भैंस सिंह होता तो दूसरे के तो कोई बख आवे तो सिंह लगाए गए, मन दूध तो रोज ना होगा। सिंगड़ा भार आठ बार रहेगा तो कोई दूसरों को दुख देना चाहता है, द्वेष रखता है, उसकी हरदम अंतकरण जलेगा। दूसरों का दुख तो कोई उसके कब्जे में आ जाए तो भले दुख दे दो, नहीं तो कैसे देगा? तो दुख ज्यादा उसका होता है जिसके हृदय में द्वेष होता है, दूसरों का नाश करना चाहता है, उसका नाश होता है, उसका महान अहित होता है। कोई लगा किसी के छुरी उसका लगता है सुरा, कोई चिंते बुरी उसका होता है बुरा, कोई जलावे पूरी उसका जलता है पूरा। कर्जुग नहीं है, कर्जुग है क्या? खूब सौदा नगद है, हल चलाते हैं, इस हाथ से बीजते हैं तो सिट्टी लेते थे इस हाथ में आता है, हजारों दाना तो काटती है, इस हाथ से बीजते इसी हाथ में आती है। हाथ भी नहीं बदलता तो कैसे बदल देगा? तो किसी का अहित करना, किसी का नुकसान करना कितना बड़ा भारी काम है, बड़ा पाप है। इस वास्ते सबका हित हो, अपने वंश का भी हित हो, सब ऐसे धर्म में जो परमात्मा की प्राप्ति करे। ये खुला दरवाजा कहाँ है बताओ? मुसलमानों के एक घंटा होता धर्म का घंटा, वो धर्म के घंटा में धर्म का घंटा है, चाहिए गिरजा में जाओ धर्म का घंटा होता है। हमारे एक मिनट भी अधर्म का नहीं है। खाना पीना उठना बैठना जन्मना मरना बीमारी सुमारी सब समय में, सोना कैसे बैठना कैसे, किस सिर रखना किस पर बैठना किस पर भोजन करना है, सब धर्म से ओतप्रोत है। धर्म में ही रसा पचा है, ऐसा धर्म जिसमें समुदाय मेरे उस समुदाय का भी नाश करते हो आप, कहाँ ऐसा मिलता है? कोई भाई इसमें सुनते हैं वाला वो लिख करके मेरे को बताओ, फिर मेरे से मिले तो मैं वो कहना शुरू कर दूंगा। मैं तो जानना चाहता हूँ, पर मैंने आज तक जाना है सुना है पढ़ा है उसी अनुसार कहता हूँ। इतनी सुगमता परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है। गीता कहती स्वस्थ कर्मणि अभिनता संसिद्धि लब्धे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण स्त्री और पुरुष पापी अन्यायी दुराचारी पाप योनि सातों का कल्याण होता है। नौवें अध्याय में अविशेष दुराचारो दुराचारी दुराचारी पाप से पाप योनि और ब्राह्मण क्षत्रिय वीर शूद्र और स्त्रियां सातों का कल्याण होता है, साफ लिखा है। कल्याण के बीच में सबका अधिकार, मात्र प्राणी का जितने मनुष्य है उनका अधिकार, पशु पक्षी भी उद्धार हो गया, गीत राज का हो गया, जामवान का हो गया, हनुमान जी का हो गया, कई कई ऐसे पशु पक्षी हो जिनका कल्याण हो गया, परंतु मुख्य मनुष्य का कोई जाति में हो, हिंदू हो मुसलमान हो कोई क्या हो, ईसाई हो बौद्ध हो कोई जैन हो यहूदी हो पारसी हो कोई क्या हो, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये हिंदू धर्म में बात साफ लिखी है, गीता में साफ लिखी है, शास्त्रों में भी बताया ऐसा अधिकारी होगा सा ये कह विवेक और वैराग्य समाज सत्संगति मुमुक्षुता साधन चतुर्थ संपन्न होगा तो श्रवण मन निर्देश इसका अधिकारी होगा। श्रवण मन निर्देश तीन और फिर तत्वों के आठ अंतरिक्ष साधन है तब होगा। हमारी गीता कहती है पापी से अभिषेक से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवे पापियों से महान पापी सर्वेभ्य पापेभ्य संपूर्ण पापियों से अधिक और पाप कृतम पाप कृत सर और पाप कृतम व्याकरण के सब समाप्त हो गए करते ऐसा उसको ज्ञान हो जाए परमात्मा प्राप्ति हो जाए अभी से सुंदर आचार हो भक्ति की प्राप्ति हो पापी से पापी को भक्ति की प्राप्ति हो जाए पापी से पापी गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थे से यज्ञ आचरता कर्म समग्र में कर्म योग करते हुए संपूर्ण पाप भस्म हो जाते कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग इन तीनों किसी योग को एक पालन करो सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पापी से पापी अधिकारी होता है हरेक दिन उसकी उदारता नहीं मिलती जितनी गीता में उदारता मिलती है उसका अध्ययन करो विचार करो आप पूछो अध्ययन करो क्यों अन्याय कर रहे हो क्यों पाप कर रहे हो क्यों यहाँ परलोक लोक का नाश कर रहे हो दुनिया का अहित क्यों कर रहे हो कितना दुनिया का कल्याण हो सकता है देशों का विदेशों का सबका कल्याण हो जाए ऐसी बात है कृपा करो माइतपण करो जरा आपने घरों का ही बालक हूँ मैं आपका ही टावर हूँ आपसे पैदा हुआ हूँ आपसे पढ़ता हूँ अभी भी आप ही पालन करते हैं हमारे पास क्या बाबा जी जाते कुछ नहीं हमारे पास आज भी आप ही पालन करते हो हमारा तो दुख होता है हमारे मन में कि आप जा रहे हैं किधर क्या कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं पाप कर रहे हैं महान हत्या कर रहे हैं इतनी बहना बैठी भाई बैठे हृदय से अब कभी संतति निरोध नहीं करेंगे और औरों को कर्ण रहेंगे नहीं बहन बेटी को भी समझाएंगे सबंधिया में कुटुंबिया को नाना नाना ने राजा ने सास रहे बेटा बेटी के सास रहे सबको शिक्षा देंगे कैसा अत्याचार मत करो ऐसा सत्यानाश मत करो आप समझते हो अपना दुनिया का कल्याण करो क्यों हत्या कर रहे हो क्यों हत्या कर रहे हो क्यों पाप कर रहे हो चालीस पचास करोड़ हिंदू कम हो गए इसी ऑपरेशन कारण से इसी संतति निरोध कारण से ऐसे ही नसबंदी कारण से ऐसे गर्भ गिराने से कितना गर्भ गिरा दिया है मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि गर्भ गिराने उस घर का अन्न मत देना महान पाप बताए जिसमें हत्या बड़ी भारी ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी बात ही बताई ब्रह्म हत्या महान पापों में बड़ा पाप है उसमें पराशर स्मृति में लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणी गर्भपात में जो ब्रह्म हत्या का पाप होता है दुगुण गर्भपात पाप दुगुणा होता है पराशर स्मृति में लिखा प्रायश्चित प्रायश्चित नहीं है ऐसी स्त्री हो पति को चाहे उसको त्याग दे घर से निकाल दे जो गर्भपात करती ऐसी आज्ञा आती पराशर स्मृति में यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्ति त्यागो विधीयते ऐसे ब्रह्म हत्या से बड़े बड़े पाप क्यों कर रहे हो आप क्या हो गया फायदा क्या हो गया थोड़ा सोर थोड़ी कम हुआ तो ठंड तो थोड़ा थोड़ा हुआ सब वंश में देख रहे हिंदू समाज में कितना हुआ 30-40-50 करोड़ हिंदू कम हो गए इससे सरकार आंकड़ा बता रहे मैं महाराज शर्मिंदगी होती है नहीं तो बताओ आप इतने बैठे हो अभी जो मजहब सुमारी है कि मतगणना जनगणना हुई उस जनगणना में कितने हिंदू है कितने मुसलमान है बता रहे कोई पाई का लाल बेरो को बताओ कितनी हुई है अभी कितना नाश कर रहे हो आप लाने क्यों पड़े हो पीछे क्यों पड़े हो इसके कोई का कल्याण हो जाए तो आपके बाप का बिगड़ता क्या है मेरे को उत्तर नहीं मिलता है किसी में किस वास्ते से अब तुम कर रहे हो अब बात यही कहते हैं इतना अन्न कहाँ खाएंगे बात करते इतने कहाँ खाते थे सात सात आठ आठ दस दस हजारों हजारों एक एक लड़का लड़की हुए हैं, उनको भी अंग मिलता था, वंश चलता है। दासोड़ी में चारण है एक रत्न रत्न जाति, दासोड़ी गांव भर दोनों बांस लंबे चौड़े, एक जिया जी की संतान है। वे सब कहते जात जियावत, एक जिए जी। यहां भी जितने बाल्ट थे वो कहते एक 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 बाल्ट की संतान है, नाम मैं जानता नहीं हूं। गांव के गांव फंसी थी एक एक आदमी के। अब एक हम दो हमारे दो मर जो खत्म कमी जो होगा ज्यादा कैसा होगा, दो शादी होते ही नहीं, चाहे दो है जिनमें मर जाएगा खत्म, आगे पैदा होगा नहीं। कितनी एक हिंदुओं का नाश करने के लिए अटकल निकाली है, पापों की खोज हो रही है, बढ़िया बढ़िया पाप करे, अजगतिक पाप करे, कैसे पाप हो, सबसे पाप करवा में अच्छी तरह से। ये कलयुग महाराज की महिमा है, आप उनके पंजे में क्यों फंस गए हो। भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जो भगवान के भगत हुए हैं कितने अच्छे अच्छे भगत हुए हैं इस भूमि में, भारत वर्ष में भगत हुए हैं इसमें भी तेज, शूरवीर हुए हैं तो इस भूमि में हुए हैं। कब झस जरा छोड़ा मैं कब झस हुए महाराज कवन, और जाति में सिवाय राजपूतों की जाति में भी और जाति में भी हुए हैं, माथा कटने पर चलाने वाले घंटियाली और जादर वाला दोनों की सीमा के ऊपर लड़ाई हुई, एक जाट था कोई वो महाराज माथा कटने पर चला, वो जाकर गिरा हुआ सीमा हुई कि यहाँ तक सीमा पर जादर वाले की हो गई। ऐसे सूरवीर, ऐसे भगवत भगत, ऐसे ज्ञानी, ऐसे यशस्वी, ऐसे पर दुख को दूर करने में यहाँ यहाँ कितनी जनता हुई है, उन सबकी खाने नष्ट करते हो, पहले ही नहीं होने देते हो, कितना पाप कर रहे हो, कहने से मानते हो नहीं, आप सोचते हो नहीं, घना आदमी हो जाएगा खाएंगे क्या, कैसी कितनी बेअकली की बात है। मनुष्य पैदा होंगे तो अनपद हो गई नहीं, शर्म आती हजारों को समझने आई। भगवान के 16,000 एक और आठ तो रानियां थी, दस दस बेटा एक एक बेटी थी, कितना होता है 16,000 एक सौ आठ रानी, और एक एक रानी के दस दस बेटा एक एक बेटी, 11,000 संतान थी, बताओ हिसाब कितना होता है।
1,60,180
एक लाख बेटा बेटी, उनको तो शर्मा ही नहीं, आपको शर्माती है, शर्म तो भगवान को आने चाहिए जो लाखों बेटा बेटी हो, घर और संतान आती है, शर्म शर्म तो मेरे को आती है, क्या करूं कहां बोलूं किसको कहूं, शर्म आती है मेरे को, क्या दशा हो रही है आपकी। दिलीप के वंश नहीं था तब गौ की सेवा करी जिसमें रघु जन्मा, वो रघु वंश है, उस रघु वंश में राम जी जन्मे, राम वंश नाम नहीं है, रघु वंश है उसका नाम, जो वंश नष्ट हो रहा था नंदनी की सेवा से पैदा हुआ हूं। तो वंश को पैदा कर वंश से करता और अनंत कीर्ति सुलक्षण आयाम तनिये आपसे ये रचना की है दिलीप ने, तो रघु हुआ, रघु के अज हुए, अज के दशरथ जी हुए, दशरथ जी के रामचंद्र जी हुए, ऐसा वंश चला है। वंश के लिए तो कितनी तपस्या, कितना कितना त्याग करना पड़ता था, राजा रोते हुए राजा रानी दो के सिवाय कोई नौकर नहीं रखा, वहां जाकर नंदिनी की सेवा की है, रात्रि में नंदिनी ठीक करती, दीपक सजाती, गाय के अभी बिछा देती, रसी वहां पर सुबह पूजा करती, माला चढ़ाती, चंदन चढ़ाती, पूजा करके भेजती, और दिन भर राजा उनके श्रेष्ठ रामोत्सव प्रयात रामोदय सदा विदासी जलवादा नाम छाए बताम भूपति रंगों का वंश गरी हमारे वंश रह जाए। आज लोग लगे रहे हो जाए बोल के वंश का नाश हो जाए, वंश का नाश हो जाए, वंश का नाश हो जाए। हम गए पश्चिम माई में दक्षिण में महाराष्ट्र में, एक नहीं महाराज हमारे दो छोरा थे, एक को पागल को चखा गया वो मर गया, इनको आशीर्वाद दो। घर में तुम्हारी खान वो तो बंद करते हैं, आशीर्वाद दो, जरूरत क्या है, जरूरत है। एक दो हो गया बंद करो, अरे वो मर जाएगा तब लोग बालक तो पैदा होने दोगे नहीं आप, और वो जीनेगा जो पालक हो गए सब बंद करो। अब दो या दो से तीसरा नहीं हो, कानून हो गया सब, कोई दो बालकों से अधिक वाला कोई आ नहीं सकता। मैंने खुद उन मनुष्य से बात से बात करी तो उन्होंने कहा कि पहले चाहे दस हो परंतु जो सरपंच बन जाए उसके बाद भी एक भी संतान हो जाए वो पद से हटा दिया जाएगा। ये खास खुद धर्म सिंह जी शेखावत की बात है, अभी स्वर्ग में मिला और उन्होंने खुद ने कहा। बोलो अब संतान हो गया तो क्या अपराध हो गया, ये कानून बनाया संसार सरकार का। आप सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते कितना अन्याय, कितना अत्याचार, कितना पाप आप कर रहे हो। परमात्मा तत्व की प्राप्ति करो, भगवान का भजन करो, वो बात तो छोड़ दी, और पाप करने में एक एक सगारी एक एक सगारी। मैंने कहा भाई खेती करो उसमें भी जानवर मत मारो, पहले जानवर मारते नहीं थे, टीडी मारते नहीं थे, मेरे को याद है बचपन की बातें, टीडी आती थी 3 वर्ष तक आती, फिर 12 वर्ष नहीं आई, फिर 3 वर्ष आती थी, बदल छा जाते छाया हो जाती थी, इतनी टीडी का डर आ जाता। लोग कहते हैं अभी तो जमाना होगा वर्षा होगी, और टीडी आती उस समय में काल नहीं पड़ता कि हमारी भी परवाह नहीं पड़ती थी, टीडी को पालन करने के लिए वर्षा भगवान करेंगे, और काल नहीं पड़ता था। अब उनको मार दिया, अब जंतु घरों को मारो, सुहा भी मारो, सब को मारो मारो मारो, तो मरने से आप भी नहीं बचोगे महाराज। एक लड़का था, डॉक्टर वाले की बात है, तो एक सरकारी अफसर आई, उसने कहा चल 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 यहां चल, ए थे चल जा हो जुड़ाव जी हो क्या समझे तो चल चल करता हो, ए थे चल जा हो चल चल करना मरने नहीं कर रहे मर गया हो चल 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 मेरे क्या चला थे चल जाओ अमर को रहो जो थे दूसरे ने दूसरे मारो थे अमर रह जाओ, तने मरनो पड़ी कुछ कुमोत खोटी मौत मरनो पड़ेगा। आज परवाह नहीं करते, घास इकट्ठा करके फूस इकट्ठा कर जाल दिया, अरे जंगल में फेंक दो उसे खाद पैदा हो जाए, घास पैदा होगा, खेत में जाओ खेत की खाद हो जाएगी, अगर जलाने से क्या होगा, कितने जंतुओं का नाश होता है, जान जान कर खेती में जंतुओं का नाश करते हैं। अरे खेती करो बढ़िया, सब खेती करो, खेती में टैक्स बंद करो, अनाज ज्यादा पैदा हो ज्यादा पैदा हो। अब पैदा क्या हुआ, क्या भाव मिलता है बताओ, हमारे को मुफ्त में रोटी मिलती है, हमें क्या पता है, आप बताओ, रुपये का किसान मिल जाता है सर, सुना है, बताओ आप बताओ, 1 रुपया का कितना आता है, 1 शेर का क्या लगता है, 1 किलो का क्या आता है, 10 आना का होता है, बताओ
5 रुपया
जी
कह रहे 5 रुपया
5 रुपये किलो
हाँ जी कहते 4 रुपया
4 रुपया किलो। 1200 का अनाज बिकता था 56 के समय, अब मैंने सुनी है, हमारा जन्म ही नहीं था उस समय, पुड़ियो 2500 3400 4800 भी अंतर आकुलियो, पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया, अगले दारों अगले कालों राजा दो जी आया। उस समय क्यों मिलते थे, बताओ। आज तब जीवों को ही मारो और युवाओं को मारो और मारो मारो हो करके अनाज कितना महंगा हो गया। खेती करो, टैक्स बंद करो, सब खेती करो, अनाज ज्यादा उपजे ज्यादा उपजे, और ये जो मनुष्यों को ही मारो काटो जिनसे अनाज खर्च नहीं हो जाए, अनाज थोड़ा है इस वास्ते। अब ऐसा कर दो सरसों, इधर तो जानवरों को मारो, इधर संतति मत होने दो जिनसे अनाज हो गया, दशा क्या हुई। एक ब्राह्मण ने देखा कि हमारी ये मदिरा पीते हैं, ब्राह्मणों में पावन की मदिरा नहीं सुबह मदिरा पिए नहीं, तो उसने देखा मदिरा में क्या आनंद है, कैसा रस आता है इसमें। तो इकट्ठे ब्राह्मणों ने विचार किया, अपने बाहर सब दरवाजा बंद कर दो, अपने देखो पीकर देखो, अपने भी देखा। अब सब पीने लगे, कुछ हल्ला मत करो, 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 मुझको हल्ला हो गया। अनाज बहुत हो गया, अनाज बहुत हो गया, बहुत हो गया, जयराम जी अनाज ही महंगा हो गया। अब क्या आदि करोगे साहब, ये मार्ग नहीं है भाई। जो सुख से रहना चाहते हो पाप मत करो, पाप करो सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, नफा चाहते हो, करते हो पाप। करो तो कुसंग, चाहत तो कुशल, और ही बड़ो अफसोस, मैं माँ घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस, पड़ोस में रावण आ गया, समुद्र बांधा गया। समुद्र ने क्या अपराध किया साहब, क्या गुना किया समुद्र ने, दशा मुख से बोलो बांधे नदी, तो नदी 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 समुद्र बांध दिया गया, बांधे समुद्र में, क्यों पड़ोस बस गए रावण जैसा, तो समुद्र में ये दशा हो। आज ये दशा हो रही है आपकी, अनाज नहीं मिल रहा है ठीक तरह से। अब इधर तो जानवरों को मारो पैदा ज्यादा हो जाए, इधर मनुष्यों को पैदा मत होने दो, अनाज ठीक हो जाए, हुआ महंगा, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला हो गया ठीक हो जाए, खेती हो जाएगी, अनाज हो जाएगा ठीक हो जाएगा, टैक्स मत लगाओ इसमें ठीक हो जाएगा। नती जाते वो क्या हुआ है, क्या आ गए बाबा जी तिल तो चौका काट दिया, कि भाई वो सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या पता, अभी दिल का दिया है, थोड़े वर्षों बाद देखना तमाशा उगड़ा उगड़। इस वास्ते भाइयों बहनों सुनो, सच्ची बात सुनो, कि भगवान का भजन करो, भगवान याद करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, सत्यानाश मत करो, वंश का नाश मत करो। संतति आ जाए कोई, उनमें कोई संत निकल जाए, न जाने कोई महात्मा हो जाए उनमें, कहाँ होगा बताओ, आप पैदा ही नहीं होने देते। एक और दो संतान तो भोगों की कामना से पैदा हुए होंगे, उसमें अच्छा आदमी निकलना मुश्किल है। मूल में जो अच्छी नियत से अच्छा काम होता है उसके संतान अच्छे होते हैं, उनके संतान अच्छे होते हैं। संतानों को देख के जाएगी बड़े घराने की है, कोई लड़की अच्छी होती है तो ससुरों में जाते हैं अच्छे बड़े घराने है, नहीं तो ऐसे घराने जो होगी छोरियां वहां जा करेगी। ऐसी ऐसी छोरियां मैंने देखी है, बड़ी कुसमार करने वाली, बड़ा पाप करने वाली, अन्याय करने वाली, ठहरती नहीं। ऐसी कहते हम तो यहां नहीं रहेंगे, इसके लिए मैं तौबा करूंगी। इस बात धमकी देती है पति को, तो ऐसे घरों से ऐसी ही होती। बीकानेर की जावत है, आ रहा था ऐसी झंझर का है, आ रहा था झंझर का ऐसी होती, और नतीजा ऐसा ही निकलेगा। एक पटवारी आया हमारे पास अभी थोड़े दिन में, 1550 रुपया मेरे को मिलता है, पर मेरी स्त्री कही कि तुम घूसखोरी करो, अन्याय करो, जो मैं करता नहीं हूँ, तो जिसने मेरे को बहुत ताना मारती तिरस्कार करती, तेरे घर में नहीं रहूंगी मैं, भाग जाऊंगी, अपने ऐसा आदमी करे घूसखोरी करो रुपया लो दूसरों से। तो वो कहते हैं मेरे विचार में नहीं, क्या करूं, अब क्या करूं, तंग कर रही है श्री, पाप करने के लिए बाध्य करती है ऐसी, बस सबनी कोई कोई होती है। अरे सीता कुंती माता जैसी हुई कोई कोई शूर्पणखा भी होती है, अब क्या बताऊ मैं। पुरुषों में, स्त्रियों में, साधुओं में, गृहस्थियों में, ब्राह्मणों में, सब में अच्छे और मंद दोनों तरह के होते हैं, सब क्षेत्रों में होते हैं। तो अच्छे बनो आप लोग, हमने तो अच्छे बने पुरुषों ने कहा अच्छे बनो, श्रेष्ठ बनो भाई। ये अपने हाथ की बात है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उनके पास सब सामग्री पूरी है। मनुष्य को जन्म दिया, मनुष्य का जन्म हुआ भगवान की कृपा से, तो उस मनुष्य को साधन सामग्री भी पूरी दी है। सामग्री नहीं ऐसे भगवान मनुष्य शरीर दे दे, साधन सामग्री पूरी है, मनुष्य शरीर दिया हुआ है। एक जन्म में कई बार प्राप्ति करे जितना समय लंबा है, पर एक बार ये दुआने की जरूरत नहीं रहती। कोई अयोग्य नहीं है मनुष्यों में परमात्म तत्व की प्राप्ति में। संसार में योग्य हरेक आदमी, हरेक काम का योग्य नहीं होता, पर परमात्मा की प्राप्ति के बीच में भाई हो, बहन हो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतर क्या हो, सबके सब परमात्म तत्व की प्राप्ति में स्वतंत्र है, साधन सामग्री उनके पास है और स्वतंत्र है, पर सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, सत्संग करते हैं, शास्त्र करते हैं, उनके हृदय में से आती नहीं कि ये कैसे बक रहा है, खबर तो लो, मेरी खबर तो आओ, किसी परीक्षा लो खबर ना इसकी, कैसे बोलता है, कुछ पर नहीं करते। थोड़ी बात डरता हूं मैं कहने में, मैंने प्रयोग किया है और हुआ है, अब और क्या कहूंगा था इससे बढ़कर के। ऐसी बिल्कुल बातें है, फिर भी इस खोज में हूं मैं कि किस तरह से जल्दी और सूम से सूम हम प्राणी का कल्याण कैसे हो गया, तो भी बात माननी पड़ेगी।